लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेविका डॉक्टर सिस्टर मेरी ग्लोरी जेएमजे के जीवन पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत का कार्तिक स्वास्थ्य संघ देश का सबसे बड़ा गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क है, जो चिकित्सा मिशनरी और ईश सेविका डॉक्टर सिस्टर मेरी ग्लोरी जेएमजे की विरासतों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में जन्मी और एक शिक्षित मेडिकल मिशनरी डॉक्टर सिस्टर ग्लोरी ने 18 साल पहले भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी स्वास्थ्य नेटवर्क की स्थापना की। इस नेटवर्क को अब कैथोलिक स्वास्थ्य संघ चाय कहा जाता है। इसमें पूरे भारत में 3,500 से अधिक स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा सदस्य संस्थान शामिल हैं। 1,000 से अधिक डॉक्टरों के साथ विभिन्न धर्म समाजों की हजारों धर्म बहनें कार्यरत हैं और नेटवर्क में स्वास्थ्य देखभाल के पेशेवरों के साथ कार्य करते हैं। सिस्टर मेरी ग्लोरी, जो सेक्रेट हार्ट जेएमजे की मेरी के रूप में भी जानी जाती हैं, पहली कार्तिक धम बहन है जिन्होंने चिकित्सा का काम अपनाया था। कलीसियाई कानून द्वारा अन्य धम बहनों को भी अनुमति मिलने से 16 साल पहले 1920 में पोप बेनेडिक्ट 15वें ने उन्हें अनुमति दे दी थी। 37 साल की अपनी सेवा में सिस्टर मेरी ने हजारों रोगियों का इलाज किया है और कई अस्पतालों का निर्माण कराया। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की और भारत में एक कार्तिक मेडिकल कॉलेज की नींव डाली। सिस्टर मेरी ग्लोरी का जन्म सन 1887 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के एक छोटे गांव में हुआ था। उनके दादा दादी आयरिश अप्रवासी थे और यह कार्तिक परिवार एक व्यापक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा था। मेरी का अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता था। मेरी की बुद्धि, ईश्वर के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता उनकी छोटी उम्र से ही स्पष्ट हो गई थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने 300 किलोमीटर से अधिक दूर मेलबोर्न में छात्रवृत्ति के माध्यम से अपनी माध्यमिक और उच्च विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। 1910 में जब कई लोग चिकित्सा पेशे को महिलाओं के लिए अनुपयुक्त मानते थे, मेरी ने चिकित्सा और सर्जरी में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अगले दशक में वह मेलबोर्न में एक सफल डॉक्टर और नेत्र विशेषज्ञ बन गए। अक्टूबर 1915 में मेरी ने स्कॉटलैंड की पहली चिकित्सक और कार्तिक धर्म स्वीकार करने वाली डॉक्टर अग्नेस मैकलारेन की जीवनी पढ़ी। 20वीं सदी के शुरू में डॉक्टर मैकलारेन ने भारत में महिलाओं की पीड़ा का सामना किया था। स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार वे पुरुष डॉक्टरों से सलाह नहीं ले सकती थी और उस समय देश में बहुत कम महिला डॉक्टर्स थी। डॉक्टर मैकलारेन ने लंदन में एक मिशन चैरिटी और रावलपिंडी में एक छोटा अस्पताल स्थापित किया था और परमधम पीठ में याचिका दायर की थी कि महिला धम बहनों को डॉक्टर के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर मैकलारेन की जीवनी को पढ़ने के बाद मेरी ने भारत में मेडिकल मिशन सेवा देने हेतु अपनी बुलाहट को महसूस किया। उन्होंने इस पर 4 वर्षों तक चुपचाप आत्म जांच किया। उनका भारत प्रस्थान प्रथम विश्व युद्ध और एक धम बहन तथा एक डॉक्टर के रूप में सेवा देने की अनुमति की आवश्यकता के कारण विलंबित हो गया। इस अवधि में सिस्टर मेरी ने न केवल अस्पताल में अपनी नियमित सेवा दी और व्यक्तिगत कार्य किए, बल्कि 1916 से 1918 तक मेलबोर्न में कार्तिक महिला सोशल गिल्ड की संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1919 में उन्होंने औषधि में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। मेरी ने जनवरी 1920 में भारत में गुंटूर की यात्रा की, जो अब आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहां वे 1904 में गुंटूर में स्थापित एक डच धर्म समाज सोसाइटी ऑफ जीसस मेरी जोसेफ में प्रवेश किया। जीसस मेरी जोसेफ या JMJ की धर्म बहनें कई वर्षों से एक डॉक्टर के लिए प्रार्थना कर रही थीं। अपने भारत आगमन से पहले मेरी इस नए देश या JMJ सिस्टर्स के बारे में बहुत कम जानती थी। अपने आगमन के एक महीने के भीतर उसने ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार को लिखा कि वे यहाँ अपनापन महसूस कर रही हैं, घर के समान महसूस कर रही हैं, और कहा कि वे भारत में गलती से पैदा नहीं हुए। समुदाय में बहुत सारे कमजोर लोगों को मेडिकल केयर की जरूरत थी। भारत में अपने पहले साल से ही सिस्टर मेरी के पास कार्तिक सिद्धांतों पर आधारित व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान और शिक्षा का दृष्टिकोण था। उन्होंने शारीरिक के साथ साथ आत्माओं की चिंता पर भी ध्यान दिया। गुंटूर में सिस्टर मेरी उन लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा पर ध्यान देने लगी जो मदद की खोज कर रहे थे, विशेषकर महिलाएं और बच्चे। उन्होंने स्थानीय भाषा तेलुगु सीखा। जहां दवाएं उपलब्ध नहीं थीं, वहां पारंपरिक उपचारों का उपयोग कर लोगों का विश्वास जीता। मेरी के भारत पहुंचने के एक दशक बाद गुंटूर में उनकी मदर सुपीरियर ने मेरी के माता पिता को लिखा कि उनकी बेटी की तुलना एक प्रकाश गृह से की जाती है। उन्होंने लिखा, वे हमेशा पृष्ठभूमि में रहती हैं, लेकिन अपने छोटे कार्यों का प्रकाश बहुत दूर तक फैलाती हैं। हालांकि JMJ की धर्म बहनों ने अनुदान के लिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपील की थी, लेकिन संसाधन कम ही रहे। सिस्टर मेरी ने 3 दशकों तक असंख्य चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों का दुख दूर करने और जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित किया, सभी से मिलजुल कर काम किया और गुंटूर में सेंट जोसेफ अस्पताल की स्थापना की। 29 जुलाई 1943 को सिस्टर मेरी ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गुंटूर में कार्तिक हॉस्पिटल संघ की स्थापना की, जिसे आज चाय कहा जाता है। आज चाय सालाना 21 मिलियन से अधिक लोगों की देखभाल करता है, जिसके द्वारा विशेष रूप से समुदाय के सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान दिया जाता है। चाय मेडिकल और समाज सेवा कार्यकर्ताओं का उद्देश्य दयालु, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से सभी के लिए स्वास्थ्य प्रदान करना है। सिस्टर मेरी ने कार्तिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए दशकों से प्रार्थना और काम किया था। उनके निधन के 6 साल बाद 1957 में बेंगलुरु में सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज खोला गया। इस वर्ष कॉलेज अपनी हीरा जयंती मना रहा है। सिस्टर मेरी की संत घोषणा की प्रक्रिया 2010 में शुरू हुई। उनकी विरासत भारत में चाय, JMJ सिस्टर्स एवं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के काम के माध्यम से जीवित है। उनका जीवन ऑस्ट्रेलियाई लोगों और उन सभी लोगों को भी प्रेरित करता है जो मेलबोर्न महाधर्म प्रांत में सिस्टर मेरी ग्लोरी के संग्रहालय का दर्शन करने आते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवी का डॉक्टर सिस्टर मेरी ग्लोरी की जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका ज्ञान दीप। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, वर्तमान समय गतिशील जीवन और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो गया है। इस समय में दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए हर व्यक्ति का साक्षर होना बेहद जरूरी है। साक्षरता सभी देश की मूल आवश्यकता है। साक्षरता विकास की आधारशिला है। यह बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के अवसर, सुरक्षित और अधिक स्थिर समाज की ओर ले जाता है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर निरक्षर होने के कारण अन्याय और अंधविश्वास के जल्दी ही शिकार हो जाते हैं। चिट्ठी पत्री के लिए भी दूसरों पर आधारित होना पड़ता है। देश में साक्षरता को जागृत करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं भी शुरू की हैं। सरकार के साथ सभी को निरक्षरता मिटाने में मदद करनी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनने का प्रयास भी करना चाहिए। यदि कम उम्र में यह संभव नहीं था तो एक प्रौढ़ व्यक्ति अपने जीवन के उन्नत चरण में भी पढ़ना और लिखना सीख सकता है। बस उनके अंदर सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका ज्ञान दीप।
बेटी श्वेता, आज स्कूल नहीं जाना है क्या?
जाना तो है माँ, लेकिन आज जरा देर से जाऊंगी।
क्यों, देर से क्यों जाएगी बेटी?
आज से स्कूल में वार्षिकोत्सव शुरू हो रहा है ना, इसलिए।
अच्छा अच्छा, और स्कूल में तेरा काम तो अच्छा चल रहा है ना बेटी?
हाँ माँ, मेरा काम तो अच्छा चल रहा है।
किसी को तुझसे शिकायत तो नहीं है ना? अपना काम ईमानदारी से करना बेटी।
अपना काम तो मैं ईमानदारी से ही करती हूँ माँ। और रही शिकायत की बात, तो मुझसे तो किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे एक लड़के शिरीष से बहुत ज्यादा शिकायत है।
क्यों, क्या बहुत मस्ती करता है?
मस्ती करता तो भी ठीक था, क्योंकि तब उसे सुधारा जा सकता था, लेकिन वह मस्ती ही नहीं करता।
तो फिर ऐसा क्या करता है बेटी कि तुझे उससे शिकायत है?
और क्या करेगा माँ, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता वह।
उसके पापा क्या करते हैं?
यही तो बात है माँ, उसके पापा नहीं है, और बेचारी माँ सब्जी बेचकर उसका और अपना पेट पाल रही है।
फिर ये लड़का आगे जाकर उसकी माँ का सहारा क्या बनेगा?
यही तो मैं भी सोचती हूँ, इसलिए आज से उस लड़के को मैंने ट्यूशन के लिए बुलाया है।
उसकी माँ ट्यूशन फीस दे पाएगी?
नहीं दे पाएगी माँ, इसलिए मैंने उस बच्चे को फ्री ट्यूशन देने का सोचा है।
मुझे खुशी हुई है सुनकर। श्वेता बेटी, ऐसे लोगों के लिए अपने दिल में हमेशा दया रखना।
लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है माँ कि ऐसे ही बच्चे पढ़ाई लिखाई का महत्व क्यों नहीं समझते, तभी इन जैसे बच्चों के भविष्य में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता।
अब जब बच्चा ही पढ़ाई पर ध्यान न दे तो बेचारी माँ भी क्या करे? दिन भर ठंड, गर्मी और बरसात में सब्जी बेचे या फिर अपने लड़के को देखे और समझाए?
अरे श्वेता बेटी, ओ श्वेता बेटी,
देख तो जरा, धनिया होगी।
देखती हूँ, आओ धनिया मामी। अरे बंसी मामा भी है, आओ आओ। हाँ धनिया मामी, और सुनाओ, आज बहुत दिनों के बाद आए हो आप लोग।
क्या करें बेटी, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती।
हाँ धनिया, कहो कैसी हो, सुनाओ अपने हालचाल।
सरला बहन, हालचाल तो हमको श्वेता सुनाएगी पढ़कर। गांव से हरी की चिट्ठी आई है।
अच्छा अच्छा, चिट्ठी पढ़वाने आए हैं आप दोनों।
अब क्या करें बेटी, हम ठहरे गाँव के अनपढ़। हरी हफ्ते भर पहले ही गाँव गया है खेत और मकान देखने, सो वहाँ का हालचाल लिख भेजा।
लाओ बताओ। सुनो, माँ और बापू को चरण स्पर्श और राम राम। मैं यहाँ अच्छा हूँ, आशा है आप दोनों भी खुशहाल होंगे। यहाँ मुन्नी भी अपने ससुराल में ठीक है और उसके बच्चे और जीजाजी भी ठीक है। मैंने अपने खाली पड़े मकान में मुन्नी और जीजाजी को रहने के लिए कह दिया है। उससे घर की देखभाल भी हो जाएगी। फसल आधी कट चुकी है, काम पूरा होते ही लौट आऊंगा। चरण स्पर्श, राम राम।
चलो सब समाचार खैरियत भरे हैं। अरे बंसी भैया, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, फिर ये चिट्ठी पत्री क्यों?
हरी बता रहा था कि वहाँ से सिंगल नहीं मिले हैं।
अच्छा अच्छा मामा, मतलब गांव के आसपास कोई टावर नहीं होगा, इसलिए सिग्नल नहीं मिलता होगा।
हाँ बेटी,
इसलिए चिट्ठी का सहारा लेना पड़ता है।
बस यही एक रास्ता बचा है बेटी।
मुन्नी के कितने बच्चे हैं?
दो, एक छोरा ने एक छोरी।
चलो ठीक है।
अच्छा बहन चलते हैं, जीती रहो श्वेता बेटी।
अरे रुको, चाय बनाती हूँ।
अरे हम मेहमान थोड़ी हैं, हम तो पड़ोसी हैं तुम्हारे, फिर आएंगे ना बेटा, ठीक है?
गांव से चिट्ठी आई तो बेचारे अपने गांव और बेटी के हालचाल पूछने चले आए। उनके पड़ोस का रोलू स्कूल चला गया होगा, वरना उनको चिट्ठी पढ़कर भी वही सुनाता है और उसका जवाब भी वो रोलू से ही लिखवाते हैं।
माँ आपको यह देख सुनकर अटपटा सा नहीं लगा? कि कंप्यूटर के इस युग में आज भी कई लोग अंगूठा लगाकर अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर हैं।
क्या करें, उनके समय उनके गांव में स्कूल नहीं होगा, तभी तो बेचारे अनपढ़ रह गए।
मगर अब तो दोनों शहर में रहते हैं, उनके पास अक्षर ज्ञान और अपने दस्तखत सीखने का अब भी मौका है।
अब इस उम्र में कोई क्या सीखेगा बेटी, और उन्हें कौन सिखाएगा?
माँ, कुछ भी सीखने के लिए, खासकर पढ़ाई जैसे विषय के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। और फिर उन्हें कौन सी डिग्री लेनी है, उन्हें तो सिर्फ अक्षर ज्ञान करवाना है और अपना नाम लिखना सिखाना है, जिससे वे अंगूठा टेक कहलाने से बच सकें, बस।
लेकिन उन्हें यह सब सिखाएगा कौन?
मैं सिखाऊंगी उन्हें। उन्हें इस लायक बना दूंगी कि अक्षरों को जोड़ जोड़ कर वे अपने काम की बात और शायद पेपर भी पढ़ लें, अपना नाम लिखने लगे।
मगर ये तो तभी हो सकेगा बेटी, जब इसके लिए उनमें रुचि हो और इसके लिए वो तैयार हो।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है मम्मी, लेकिन इसके लिए मैं उनमें रुचि जगाऊंगी और उन्हें तैयार भी करूंगी।
मेरा आशीष है बेटी कि तू उनके लिए ज्ञान का दीप जरूर जलाए।
हरी जब भी गांव जाता है और वहां से चिट्ठी लिखता है तो हमें उसे पढ़वाने और जवाब लिखाने के लिए शेलू का सहारा लेना पड़ता है। अब आज वह नहीं था तो हमें श्वेता का सहारा लेना पड़ा।
अब हम भी क्या करें जी, आंखें होते हुए भी हमारे सामने तो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है ना।
कभी कभी तो दिल करता है कि मैं भी सेलू की तरह स्कूल जाऊं और पढ़ूं।
स्कूल और पढ़ाई, वो भी इस उम्र में?
बात तो तेरी सही है, अब तो हम चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकते।
अगर इस उम्र में हम पढ़ सकते ना, तो सबसे पहले तो मैं ही जाती पढ़ने के लिए।
अरे जब इतने साल हमने अंधेरे में बिता दिए हैं तो अनपढ़ता का ये अंधेरा कुछ साल और सही।
हाँ सही है, अब इस उम्र में हम क्या पढ़ लेंगे और क्या लिख लेंगे, फिर हमें पढ़ाएगा भी कौन? आजकल किस पढ़ लिखे के पास इतना समय होगा जी?
अब तो यह मानकर चल कि हमारे लिए काला अक्षर और बराबर ही रहना है मरने तक। श्वेता बेटी, हम दोनों आ गए हैं।
अब जल्दी से जवाब लिख दे बेटा।
ओह, मतलब मामा मामी चिट्ठी का जवाब लिखवाने आए हैं। खैर वो तो मैं लिख ही दूंगी, लेकिन मैंने एक खास बात के लिए आप दोनों को बुलवाया है।
बंसी भैया और धनिया भाभी, अगर आप दोनों पढ़ने के लिए तैयार हो तो ये श्वेता आप दोनों को पढ़ाने के लिए तैयार है, बोलो।
सरला बहन, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुना तूने धनिया, सुना तूने?
हाँ हरि के बापू, सुना मैंने। हम घर पे नहीं बात कर रहे थे, लगता है भगवान ने उसे पूरा कर दिया।
लेकिन श्वेता बेटी, हम दोनों चाहकर भी तुमसे पढ़ नहीं पाएंगे बेटी।
क्यों बंसी मामा, ऐसी क्या बात है?
बेटी अब इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करना क्या शोभा देता है?
पढ़ाई लिखाई करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। आप दोनों की अगर अक्षर ज्ञान और अपना नाम लिखना सीखने की इच्छा है तो मैं आप दोनों को सिखा दूंगी। हम टाइम निकाल करके यह भी फिक्स कर लेंगे कि आप दोनों मेरे यहाँ या मैं आप दोनों के यहाँ पढ़ाने आऊँ।
बेटी तुम्हारा ये हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा।
हाँ बेटी।
तो बंसी भैया और धनिया भाभी, अब अपनी पढ़ाई की तैयारी कर लेना।
जरूर बहन जरूर। श्वेता बेटी, अगर तुम्हारी तरह हर पढ़े लिखे लोग अपने आसपास के हम जैसे अनपढ़ों को अक्षर ज्ञान और नाम लिखना सिखा दे तो हमारे देश में शायद कोई भी अनपढ़ ना बचे।
अब तो मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है हमारी अनपढ़ता का दूर होता अंधकार।
श्वेता बेटी, तूने ज्ञान दीप की जो लौ जलाई है उसे ऐसे ही जलाए रखना।
हाँ माँ।
ज्ञान दीप, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, नलिनी गहलोत, समता खान चंदानी और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।